नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से प्रसारित इस फेसबुक और यूट्यूब लाइव पेशकश में। संपूर्ण योग इस सीरीज का नाम है और इस सीरीज में हम 21 दिनों का योगा चैलेंज आप सबको दे रहे हैं। तो आने वाले इन 21 दिनों में हम सभी मिलकर योग को सही तरीके से समझकर उसके संपूर्ण बेनिफिट्स को जानेंगे और अपने लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। इसलिए फिजिकल योगा के साथ साथ योग के सभी एस्पेक्ट्स को समझने का यह हमारा छोटा सा प्रयास है। आइए आज संपूर्ण योग के तीसरे दिन पर योगासन से शुरुआत करते हैं, यानी फिजिकल योगा से। हमारे साथ फिर से हरीश वैद्य जी जुड़े हैं बड़ौदा से और वो आज हमें एक नया आसन सिखाएंगे। तो आप भी हो जाइए तैयार और हमारे साथ कीजिए इस योगासन को। तो आने वाले 5 मिनट में इस योगासन को हम साथ साथ करेंगे और फिर आज के बोध के लिए वापस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं योगासन।
नमस्कार, ओम शांति, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? आज तक जितने भी आसन बताए शायद आपने अभ्यास किए होंगे। बहुत सरलता से हम पेश करते हैं और उसके साथ किस प्रकार के रोगों में फायदा हो सकता है और सारी उपलब्धियां क्या है वो भी हम लोग बताते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ही आप किसी भी फील्ड में तरक्की कर सकते हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का मतलब है आपको किसी भी फील्ड में एक पैर भी रखना हो तो आपको सबसे पहला सपोर्ट, याद रखिए, राजयोगी भी बनना है आपको तो सबसे पहला सपोर्ट खुद के शरीर का चाहिए। अगर शरीर ही ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज हम शरीर को पूर्ण रूप से संतुलित करने के लिए जो एक आसन हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, जो दो तरीकों से हम कर सकते हैं, वो है पर्वतासन। पर्वतासन में मन बिल्कुल अडिग हो जाता है, मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, एकाग्रता बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारा जो सर्वाइकल जोन है, फिर यहाँ विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है, तीनों चक्रों में तो ऊर्जा भरना शुरू हो ही जाता है। लेकिन हमारा जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार से मणिपुर की यात्रा भी बहुत बढ़िया रहती है। ये पांचों ही चक्रों को आप तंदुरुस्त बना सकते हो, स्वस्थ बना सकते हो। पर्वतासन में सबसे पहला पार्ट जो है वो आपको खड़े हुए बता देते हैं कि किस प्रकार से पर्वतासन होता है। उसमें रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल उपयोग में आती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उपयोग में आता है, फिर घुटनों के जॉइंट्स और ये पैरों का भी जॉइंट, एंकल जॉइंट जिसको बोलते हैं, वो भी उपयोग में आता है। उसको ऊर्जा मिल जाती है और उसका फंक्शनिंग बढ़िया रहता है। खड़े होके दोनों पैरों में 2 फुट का फासला रहे आपके। 2 फुट का फासला करने के बाद आप लेफ्ट पैर को थोड़ा उस ओर मोड़िए, फिर दोनों हाथ आगे ले जाइए ऊपर की ओर, नीचे झुकिए, फिर आगे वाला जो पैर है उसको बिल्कुल पीछे ले जाइए और एड़ी जमीन से चिपकी हुई हो, दाढ़ी गले से चिपकी हुई हो, बिल्कुल बॉडी ऊपर की तरफ खींची हुई हो, हमारा जो नितंब का स्थान है वो ऊपर खींचा हुआ हो, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए, खिंचाव आना चाहिए, पैरों में भी खिंचाव आना चाहिए, ये है पर्वतासन। कई लोग इसे भूधरासन भी कहते हैं। इसमें आप 2 मिनट 3 मिनट भी रुक सकते हो, एकाग्रता की अनुभूति तो कीजिए, कितना बढ़िया हो जाता है। आज्ञा चक्र में इतनी ऊर्जा आ जाती है, आपके पिनियल और पिच्यूटरी को इतना ब्लड मिलता है, इतनी ऊर्जा मिलती है कि हाइट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है मैडम, जब आज्ञा चक्र के द्वारा पिनियल और पिच्यूटरी ग्लैंड को ऊर्जा मिलना शुरू हो जाता है ना, तो बच्चों की हाइट बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, चेहरे पर चमक आ जाती है, पैरों में जान आ जाती है, पैरों के स्नायुओं में शक्ति भर जाती है। अभी पैरों का तो देख लिया, तो हाथों का क्या? तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो बैठे हुए हैं, बैठ जाएंगे अभी, आप लोग भी बैठ जाइए जमीन पर। आपने आसन जमा लिया होगा, सीधा बैठना है या तो पद्मासन में बैठ सकते हैं या सुखासन में बैठ सकते हैं, या सिद्धासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में भी आप बैठ सकते हो। ये जो बैठे बैठे किए जाने वाले आसन के प्रकार है वो भी हम आपको सिखा देंगे। अच्छा, तो अभी हम ये पर्वतासन करेंगे। बैठे बैठे जो है वो सीधा बैठेंगे, दोनों हाथ इस प्रकार से ले जाएंगे और ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल खींची हुई अवस्था में ऊपर उठाइए, और खींचो हाथ को ऊपर, और खींचो और खींचो। आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे, आज्ञा चक्र यहां होता है, ध्यान करेंगे मध्य मस्तिष्क में कपाल की जगह पर। रीढ़ की हड्डियां तनी हुई हो, खींची हुई हो, इससे पूरे बैक साइड में हमारी रीढ़ की हड्डियों को अच्छा व्यायाम मिलता है, हमारी स्कंदम एकलाओं को अच्छा व्यायाम मिलता है, जिनको फ्रोजन शोल्डर के चांसेस है वो भी समाप्त हो जाते हैं। ये आसन अगर आपने रोज किया तो फ्रोजन शोल्डर भी कभी नहीं होगा, एकाग्रता इतनी बढ़ जाएगी, आपकी याद शक्ति बढ़ेगी, परमात्मा स्मरण के बारे में भी आपका कॉन्सेंट्रेट होना जरूरी है, एकाग्रता बढ़ानी है तो ये अपना लीजिए। और ऊपर की नितंब से ऊपर के शरीर की तंदुरुस्ती अगर आपको बनाए रखनी है तो ये आसन आपके लिए सबसे परफेक्ट है। ये लगभग लगभग फ्रोजन शोल्डर के दर्दियों को और सर्वाइकल के दर्दियों को छोड़ करके सभी लोग कर सकते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। रितु मैडम, आप फिर से मूल स्थिति पर वापिस आ जाइए, आप ये आसन करके देखिए, इसको रोज बरोज के जीवन में स्थान दीजिए। हमारी जो ध्येय है ब्रह्मा कुमारीज की, वो आपको बिल्कुल तंदुरुस्त बनाना है। अच्छा, ये पूरा श्रेय मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता हूँ। प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरी जगत जननी भारत माता को प्रणाम करके आज के विषय के समाप्ति की चाहना रखता हूँ। अस्तु, ओम शांति।
बहुत धन्यवाद हरीश वैद्य जी का और ऋतु जी का, जिन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमें ये सिखाए पर्वतासन के बारे में। और हम सब मैं समझता हूँ बहुत ही आसान सा आसन है, अगर आप वो जो खड़े होकर करने वाला आसन नहीं कर सकते तो बैठकर हम सभी जहां पर भी आप बैठे हैं अभी भी आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर लेकर एकदम स्ट्रेच की पोजिशन पे आ सकते हैं और इतने सिंपल सी चीजें हम सीख रहे हैं और हर दिन इसको अगर हम लाइफ में अपनाते हैं तो हम अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आइए इस कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बता दूं, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम है और लाइव प्रोग्राम में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यानी यूट्यूब पर अपने कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पर कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न लिखिए, या आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो लिखिए, हम आपके कमेंट्स को स्क्रीन पर दिखाएंगे और कार्यक्रम के दौरान प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अगर आप एप्रिसिएशन दिखाना चाहते हैं या फिर आप इस प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं या कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उन चीजों को हम स्क्रीन पे दिखाएंगे ताकि आप भी अपने कमेंट्स को देख पाएंगे और आपके दोस्ती से पढ़ पाएंगे। दोस्तों, कार्यक्रम के अगली कड़ी पर यानी अगले हिस्से पर हम चलते हैं, आज के बोध के बारे में, पतंजलि के अष्ट अंगों के बारे में, जो योग के अष्ट अंगों के बारे में महामुनि पतंजलि ने कहा है, उसके कुछ ही चीजों को हम समझ पाए हैं। हालांकि उसके जो आठ अंग हैं उसमें से यम पहला प्रकार है या पहला उसका डिस्टिंक्शन है और इस यम में भी अलग अलग यम है। हमने सत्य और अहिंसा के बारे में कल और परसों जानकारी ली है और आज एक नए यम के बारे में जानकारी लेते हैं। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय शांतिवन से राजयोगिनी गीता दीदी जी जुड़ेंगे। आइए दीदी जी के पास चलते हैं। नमस्कार दीदी, स्वागत है आपका।
थैंक यू।
दोस्तों, हम जुड़ चुके हैं राजयोगिनी गीता दीदी जी से, जो ब्रह्मा कुमारी इसके शांतिवन परिसर मुख्यालय से आबू से हमारे साथ हैं। और दीदी जी से आज हम यम में से जो तीसरा यम है वह है ब्रह्मचर्य, उसके बारे में हम जानेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत कुछ पढ़े लिखे होंगे, बहुत सारे लोगों के पास कुछ जानकारियां होंगी, मगर इसको योग में इसे एक यम के रूप में क्यों गिना जाता है, इसकी क्या अहमियत है और इसके सही मायने क्या है, आज हम दीदी जी से सुनेंगे। दीदी जी, आपका बोध।
ओम शांति। योग के जो आधारभूत सत्य है उसमें ब्रह्मचर्य भी समाविष्ट है और अगर हम अपना जीवन योगी जीवन बनाना चाहते हैं तो इसका पालन करना बहुत जरूरी है। जीवन जीने के दो तरीके बताए जाते हैं, एक है भोग मार्ग और दूसरा है योग मार्ग। भोग मार्ग को ही प्रेय मार्ग कहा जाता है और योग मार्ग को श्रेय मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग कहा जाता है। योग शब्द ही पवित्रता और अलौकिकता का सूचक है, इसलिए पवित्रता की धारणा करना ही कमलासन करना है। जिस कमल आसन पर बैठकर ही हम योगी बन सकते हैं। कमलासन माना मन वचन कर्म की पवित्रता को जीवन में धारण करना। पवित्रता माना केवल स्वच्छता रहे। पवित्रता का ही यादगार है कि देवी देवताओं के मंदिर में भी हम कितनी स्वच्छता रखते हैं। जब हम स्वयं मनुष्य से योगी बनना चाहते हैं और संपूर्ण योगी बन हम संपूर्ण देवी देवता बनना चाहते हैं, तो हमें उसकी शुरुआत पवित्रता से करनी है। बिना पवित्रता योग नहीं लग सकता है, क्योंकि हमें योग उस परम पवित्र सदा पावन पतित पावन पवित्रता के सागर परमात्मा से लगाना है। तो विषयी मन परमात्मा से कैसे लग सकता है? प्रैक्टिकल अनुभव भी होगा आप सबका कि जब मन में काम वासना होती है, दैहिक आकर्षण और विषय भोग भोगने की इच्छा होती है तो मन चंचल रहता है, और ऐसा विषय मन परमात्मा में एकाग्र नहीं हो सकता है। यथार्थ योग का एक अभ्यास आत्मभिमानी सोल कॉन्शियस बनना है। योग में भी दो रियलाइजेशन का ही तो विशेष अभ्यास किया जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। तो जब सेल्फ रियलाइजेशन माना अपना रियल सेल्फ जो चैतन्य आत्म स्वरूप है, अगर हमें इसका अभ्यास करना है तो अंडरस्टूड है कि देहभान से बॉडी कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं उसको हमें चेंज करना होगा। और जब स्वयं के देहभान से न्यारे होना है, क्योंकि परमात्मा देह का पिता नहीं है, परमात्मा हम आत्माओं का पिता है। परमात्मा को याद करने वाली हम चैतन्य शक्ति आत्मा है, इसलिए जब देह भान भूलना है, आत्म भान में स्थित होना है, तो अन्य के शरीर को भोगने की तो बात ही नहीं रहती है, वो तो अपने आप ही समाप्त हो जानी चाहिए। तो इसलिए आप देखिए, जिन्होंने जीवन में पवित्रता अपनाई है उसे ही पूज्य और ऊंची नजर से देखा जाता है। जब तक कन्या पवित्र है, शादी नहीं की है या कौमार्य व्रत अखंड रखा है, ब्रह्मचर्य व्रत जिसके जीवन में अखंड है, उन कुमारिकाओं की पूजा होती है। आप जानते हैं नवरात्रि के दिनों में कुमारियों को देवियों का स्वरूप माना जाता है और उनका पूजन किया जाता है। सन्यासियों को क्यों हम सम्मान देते हैं जबकि क्रोध, अहंकार और विकार उनमें भी पाए जाते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य की धारणा है तो उसे पूज्य माना जाता है। पवित्र देवी देवताओं का हम पूजन करते हैं तो ब्रह्मचर्य, काम वासना पर विजयी बनना, ये ही हमें ऊंच और पूज्य बनाता है। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता में भी ये स्पष्ट आदेश दिया गया है कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। इसलिए उसी श्लोक में कहा गया है कि तुम उसका त्याग करो, उस नरक के द्वार में प्रवेश नहीं करो। ये भी कहा जाता है कि काम वासना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, क्रोध से स्मृति भ्रंश होता है, मूढ़मति बनते हैं, विवेक नष्ट होता है और इस प्रकार हर प्रकार से विनाश, विवेक भ्रष्टा नाम शतमुखे विनिपात, हर प्रकार से उसका विनाश होता है। इसलिए सभी विकारों की जड़ काम वासना है। हमारा जीवन योग के लिए है, भोग के लिए नहीं है। अगर आप इस संसार का इतिहास देखें तो आज देवी देवताओं को भी योग बल से, संकल्प शक्ति से पुत्र रचना माना, संतान रचना करते हुए बताए। आप देखिए शास्त्रों में, पौराणिक उल्लेख में भी बताया जाता है कि ऋषि मुनि योग बल से, मंत्र बल से मंत्रित करके राजाओं को फल देते थे और संतान प्राप्ति होती थी। तो योग बल माना संकल्प शक्ति, पवित्र संकल्प, शक्तिशाली संकल्प में वो सिद्धि समाई हुई होती है। इवन ऋषि मुनियों को भी प्रवृत्ति मार्ग के दिखाए गए हैं, ऋषि पत्नी, ऋषि पुत्र उनको दिखाए जाते थे, वो मंत्र शक्ति से संतान प्राप्ति करते थे। परंतु इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति हम जन्म बाई जन्म गंवाते गए और हमारे में वो शक्ति नहीं रही। आप देखिए महाभारत में भी श्री व्यास को, व्यास मुनि को भी बताया है कि दृष्टि की शक्ति से उन रानियों को संतान की प्राप्ति कराई। तो ये योग बल इसको कहते हैं। योग बल माना शुद्ध निर्विकारी मन, वचन और कर्म। मन से, वचन से या कर्म से किसी भी आत्मा के साथ, फिर वो स्त्री शरीरधारी है या पुरुष शरीरधारी है, उनके साथ वासनात्मक समागम न करना, वो है ब्रह्मचर्य। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य तो बहुत ही उच्च स्थिति का होता है। महाभारत में भीष्म जी ने जब ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की तो जल, थल, नभ सब हिल चुके थे, इतनी ब्रह्मचर्य में शक्ति। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन देह भोगने के लक्ष्य से व्यर्थ न जाए, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करके हम अपना जीवन योगी बनाएं। योगी बनने के लिए कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, विषय विकार छोड़ने की जरूरत है। भक्ति में भी भगवान को हम कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देना। मूल चाहना तो आत्मा को यही है ना कि हम विषय विकारों से पापों से मुक्त हो जाएं, क्योंकि उसी के कारण हम दुख भोग रहे हैं। तो क्यों नहीं आध्यात्मिक ज्ञान और योग के आधार पर हम अपने जीवन में पवित्रता और दिव्य गुणों की धारणा करें, तो बहुत जल्दी हमारे में मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता और मनोबल का विकास हम करते हैं। कहा भी जाता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, या तो आप मन में राम रखें या काम रखें। राम अर्थात वो ही निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करना चाहे, या विषय वासना में अपनी शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति वेस्ट कर दें। इसलिए संसार अनादि काल से प्रवृत्ति मार्ग का बना है और वो अनादि प्रवृत्ति काल पवित्र और शुद्ध था। वो आत्मशक्ति न रहने के कारण ही हम शारीरिक स्तर भोगना के स्तर पर आ गए। तो ब्रह्मचर्य वर्तमान समय आप देख रहे हैं कि लोगों के मन में कितनी काम वासना की आग लग गई है। आज कैसे कैसे बलात्कार के केसेस हो रहे हैं, आज जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण क्या है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण ही साधनों की अभाव की स्थिति बनी है। आज रहने में, खाने में, चलने में, हर जगह आप देखिए कितनी भीड़ हो गई है, कितनी गंदगी हो गई है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि का कारण भी काम वासना है। और आज लाखों गृहस्थी ब्रह्मा कुमारीज में है, जैन धर्म में है, जो ब्रह्मचर्य की पालना कर अपने युवा काल से पालना करते हैं। विवाहित जीवन के आरंभ से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप गांधी जी और कस्तूरबा भी ब्रह्मचर्य का पालन 40 वर्ष के आयु से करते और उसके कारण उनका पूरी एकाग्रता स्वतंत्रता प्राप्ति के तरफ रही। हमारे रामकृष्ण परमहंस जी और शारदा माता, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य की पालना की थी। तो ऐसा नहीं है ग्रस्त में रहते ग्रस्त जीवन विषय भोग के लिए ही है, नहीं। पति पत्नी आपस में स्नेह से और सहयोग की दृष्टि से साथी बन के रह सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि विषय भोग हो उसमें। पवित्र वृत्ति अर्थात सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। कोई हमारा सहयोगी हो या ना हो, जो पवित्र योगी आत्मा है वो हरेक के प्रति शुभ भावना रखेंगे, शुभ कामना रखेंगे, तो मन भी हमारा शुद्ध रहेगा। मन का उपयोग जब हम पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन, विषयी चिंतन में करते हैं, तभी तो हम योगी नहीं बन पाते। पवित्र दृष्टि अर्थात हरेक को आत्मा की नजर से देखना। जब हम देह दृष्टि से देखते हैं तो मन में ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये युवा है, ये बूढ़े हैं, ये देह दृष्टि है। अगर हम इस मूल सत्य को स्वीकार करें कि हम स्वयं आत्मा है, हर व्यक्ति एक आत्मा है और हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो इस आत्मिक नजर से हम सबको देखें और ऐसे पवित्र योगी प्रैक्टिकल कर्म से सुख देंगे और सुख लेंगे। आज कोई न कोई विकार मन में होने के कारण आपस में हम दुख देते हैं और हम स्वयं भी दुखी होते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य के बिना योग शक्य ही नहीं है। वो शब्द ही हमें बताता है कि जो सदा देहभान से ऊपर न्यारे इस देह की दुनिया और पांच तत्वों से भी परे जो अपने असली पवित्र घर ब्रह्मलोक में विचरण करते हैं और ब्रह्मलोक निवासी परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, वो ब्रह्मचारी है, वो सच्चा योगी है। वर्तमान समय अगर हमें विश्व को श्रेष्ठ बनाना है, अपने चरित्र को सचरित्र बनाना है, तो शुरुआत तो ब्रह्मचर्य से ही हमें करनी होगी। पवित्रता की धारणा से काम वासना पर विजय पाकर आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि बाकी के विकार ऑटोमेटिक कमजोर पड़ जाते हैं और थोड़े से पुरुषार्थ के बाद हम कामजीत बन जाते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को हम सबके सामने स्पष्ट किया। और इस बोध से ये चीज पता चलता है कि ब्रह्मचर्य जितना कठिन माना जाता है इतना है नहीं। और आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि भारत की संस्कृति में आश्रम व्यवस्थाएं हैं, यानी गृहस्थ भी एक आश्रम है। ऋषि मुनि भी ऋषि पत्नियों के साथ, ऋषि पुत्रों के साथ एक परिवार में रहते हुए भी एक आश्रम, जितनी पवित्रता उनके जीवन में है इसलिए उसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। और आज वर्तमान में भी लोग ऐसे श्रेष्ठ जीवन को जी रहे हैं, ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण कर रहे हैं, ये आपने स्पष्ट किया। मुझे वो बात याद आती है कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार ये बात कही थी कि मुझे ब्रह्मचारियों का एक समूह ऐसा बनाकर दे दो, मैं इस पूरी दुनिया को बदल के दिखा दूंगा। तो स्वामी जी की उस कथन से ये पता चलता है कि जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में स्वामी विवेकानंद को हम देखते हैं, उनका भी ये कथन हमें प्रेरित करता है कि ब्रह्मचर्य योग के लिए कितना आवश्यक है, ये कितना शक्तिशाली टूल है। दूसरी जगह जहां पर हम बापू की जीवन कथा पढ़ते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की जीवन कथा में वो ये कहते हैं कि भारत की स्वाधीनता संग्राम में ब्रह्मचर्य का बल है, जिन्होंने बापू को बल दिया है ऐसा वो कहते हैं। तो हम सभी इस बात से आज रूबरू हुए हैं। और पतंजलि इन आठ सूत्रों के बारे में जब बात करते हैं तो योग के यम में ब्रह्मचर्य को एक स्थान देते हैं और इसकी महत्व क्या है उस चीज को हमने आज समझा। हमारे अगर कुछ दोस्त सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं और आपके कमेंट्स से मैं प्रश्नों को दीदी के लिए साझा करूंगा। एक प्रश्न हमारे एक दोस्त ने पूछा है, वास्तविकता में जब हम इन चीजों को सुनते हैं तो तभी तो ये बहुत ही मोटिवेटिंग लगता है, बट ब्रह्मचर्य को बहुत ही मुश्किल समझा जाता है और आज के समय के हिसाब से ब्रह्मचर्य को आसानी से पालन करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये प्रश्न पूछते हैं।
देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तो स्वयं ही संकल्प करना होता है, हमें स्वयं ही अपने मन से निर्णय लेना होता है कि मुझे अपना जीवन भोगी बनाना है या योगी बनाना है। अगर योगी बनाना है तो मुझे ये धारणा करनी है और जो मेरे जीवन साथी है, जो पत्नी है या पति है, उनके साथ भी इस विचार को बताना है कि हमें अब अपना जीवन केवल देह भोगने में शक्ति खर्च नहीं करनी है, लेकिन पवित्रता के व्रत को अपनाकर हमें जीवन को सफल और शक्तिशाली बनाना है। दोनों आपस में बातचीत करें और हम स्वयं दृढ़ रहे तो अपने जीवन को हम पवित्र बना सकते हैं। इसमें कोई मुश्किलात की बात नहीं है। अगर आपको मन मजबूत करने के लिए कुछ मदद चाहिए तो आप परमात्मा के सत्य ज्ञान का राजयोग का फाउंडेशन कोर्स जो ब्रह्मा कुमारीज में कराया जाता है वो आप करिए और उन सत्यों को समझिए। इन सत्य ज्ञान से हमें ये शक्ति मिलती है कि हमारी स्मृति बदल जाती है, हमारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध बन जाती है।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। जैसे ये बात कह रहे थे, एक और प्रश्न ये आया है कि आज के समय के हिसाब से जब हम चीजों को देखते हैं तो लोग इसे प्रासंगिक नहीं समझते, क्योंकि ऐसे कोई उदाहरण जीवन में जो आज हम देख सकें वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। जब आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बता रहे थे और पुरातन उदाहरणों को बता रहे थे तो तब इस बात को हम कोरिलेट कर पाए। क्या आज के इस वास्तविक जीवन में भी ब्रह्मचर्य का इतना महत्व है, इसके बेनिफिट्स हम आज भी ड्रॉ कर पाएंगे?
बिल्कुल कर पाएंगे, और इसके लिए प्रैक्टिकल हम अनेक उदाहरण देख सकते हैं। कई जैन धर्मी कपल्स भी पवित्रता ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर जीवन जीते हैं, और ब्रह्मा कुमारीज में तो लाखों युगल मीन्स पति पत्नी आपको मिलेंगे जो इस दुनिया में रहते हैं, अपनी गृहस्थी में रहते हैं और फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आज के समय में इस वासना और विकार से भरे कलयुगी संसार को अगर हम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए पवित्रता की शक्ति मस्त है, बहुत जरूरी है और बहुत सहजता से हम अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। आप कोई भी हमारे सेवा केंद्र की मुलाकात लीजिए, आप बताएंगे तो आपको हम ऑनलाइन भी ऐसे युगलों के अनुभव आपके सामने रख सकते हैं।
जी, एक और प्रश्न है दीदी जो हमारे एक साथी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मानसिक समस्याओं के लिए अगर जैसे कोई व्यक्ति किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है तो ऐसे समय पर उसके निदान के लिए क्या करना चाहिए, योग कैसे मदद करता है? ऐसा वर्षा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो पूछते हैं मानसिक प्रॉब्लम्स का इलाज बताइए।
देखो, जो मानसिक रोगी है, क्योंकि योग की ये जो सत्य और उच्च बातें हैं वो जानने और समझने के लिए नॉर्मल स्टेज चाहिए। जो व्यक्ति एबनॉर्मल स्टेज में है, पहले हम उनको मनोचिकित्सकों के साथ मिला के उनके मार्गदर्शन में, चाहे परिवार के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनके साथ बैठकर बात करें, उनकी समस्या समझने की कोशिश करें और वो मानसिक रोगी बन जाए उससे पहले हमें उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और अगर वो रोगी की स्थिति में आ ही गया है तो काउंसिलिंग कराएं हम, और ऐसे मनोचिकित्सक के मार्गदर्शन में उनको ठीक करें, और थोड़ा भी ठीक होते हैं फिर ये जो योग का ज्ञान है, योग का अभ्यास है, वो उसको बहुत उपयोगी बन जाता है और बहुत जल्दी वो अपना बीमारी से मुक्त हो सकते हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। वर्षा जी, जो आपने प्रश्न पूछा, मैं समझता हूँ उसका उत्तर आपको मिला है कि ये जो बात है कि अगर आप किसी ऐसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। अगर आप माइल्ड स्टेजेस में डिप्रेशन या स्ट्रेस या तनाव जैसी चीजों को फेस कर रहे हैं तो नेचुरली उसके लिए बहुत सारा हेल्प लिया जा सकता है, काउंसिलिंग लिए जा सकते हैं, राजयोग के अभ्यास को भी सीखा जा सकता है। बट जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपको कोई ऐसी मानसिक बीमारी है तो जैसे नॉर्मल बीमारी के लिए हम डॉक्टर से इलाज लेते हैं, वैसे प्रोफेशनली साइकोलॉजिस्ट से या काउंसलर से
वो इंफॉर्म करते हैं, इसलिए अगर हम अपने आप को आदर्श माँ बाप बनाएंगे तो बच्चों को हम अवश्य भी बना सकेंगे और प्रैक्टिकल ज्ञान योग की स्टडी हम करते होंगे तो हमारे बच्चे भी बनेंगे। हम ऐसे लाखों ब्रह्मा कुमारी बनते हैं जो माँ बाप ज्ञान में चले, योग में चले, उनके जीवन में जो सुंदर परिवर्तन आया वो देखता है हम लोग।
बिल्कुल बात है उसमें जो कुछ विकास में से देखने को मिले तो हमें बहुत अच्छा लगने लगा कि हम दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली है, मानसिक रूप से ज्यादा संभव हमारे अंदर देखने को मिला। तो दिन बात करें बहुत अच्छा है कि बच्चों को बच्चे न समझकर हम माता पिता की राशि रख पाए और साथ साथ उनको भी वैसा माँ और मैंने वैसा एनवायरमेंट के लिए जाए पॉजिटिव बच्चे शिक्षित करें। एक और प्रश्न है कि पश्चिमी की जो मैंने बात है मन को किसी बात के लिए भी प्रसन्न करने से स्ट्रेस होता है कि लेकिन के लिए क्या प्रसन्न नहीं करना पड़ेगा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीज हमने देखा अभी पिछले महीने रमजान का महीना और रमजान के महीने में इतना धर्म के लिए बताया जाता है कि रमजान के महीने में हर कोई ब्रह्मचर्य धारण करता है।
राजयोग
और आपके अंदर संयम
चलाने वाले चैतन्य शक्ति
जैसे कमल का फूल गहरा और प्यारा है, अब मुझे इस पुष्प से प्रेरणा लेकर फूल गहरा और प्यारा बनना है। संसार के सभी मनोविकारों से स्वयं को मुक्त करना है और उसके लिए अपने मन के पास एक शिव परमात्मा से जोड़ना है। कमल पुष्प के समान बनने के लिए अब मुझे सभी की विशेषताओं को ही देखना है। क्योंकि जैसा हम देखेंगे वैसे हम बन कर सकते मशीनों से अटेंशन रखना है। मेरे ऊपर गुरुओं का अनुग्रह का कोई असर न हो उसके लिए कुछ अन्य अपनी बुराइयों से स्वयं को बचाना है। और इतने में दूसरों की विशेषताओं को देखते जाओगे उतना हम विशेषता संपन्न बनोगे। कमल फूल समान बनोगे क्योंकि जैसा मेरा चैतन चलेगा वैसा मेरा चरित्र बनेगा। माया प्रथाओं से अब मुझे स्वयं को बचाना है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा पवित्रता के सागर शिव परमात्मा की जीव संतान हूँ। महसूस करें परमात्मा से पवित्रता की करने निकल कर मुझे आत्मा में समर्थ जा रही है और यह आत्मा कमल पुष्प के समान एक अनुमान और सर्व की तारीफ करती जा रही है। तो आइए हम सभी मिलकर इस पवित्रता के सागर पर शुक्रिया अदा करें। परमात्मा सभी आपकी प्रिय संतान, आपका सच्चे दिल से शुक्रिया करते हैं। आपसे संपर्कता के पूरे पाकर धन्य हो गए। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे कमल पुष्प सुधार न्याय और सबका प्यारा बनना है।